हाँ साहब, एक इसी अगर हम आइडियालॉजिकल बहस करना शुरू करें, आगा साहब ने तो मादी एतबार से थोड़ा तहलील किया इस मसले की अहमियत को कि दुश्मन क्यों इस तरफ जा रहा है, लेकिन थोड़ा अगर आइडियालॉजिकल हम बहस करना शुरू करते हैं तो वहाँ एक इस्तेलाह सामने आती है आर्मागेडन की। आर्मागेडन के ऊपर आप जानते हैं कि हॉलीवुड ने जो है वो मुख्तलिफ फिल्में भी बनाई हैं इस मफहूम को लोगों के जहन में डालने के लिए। तो ख्वाहिश आपसे यही होगी कि आप इसको बयान करें कि असल मफहूम आर्मागेडन का है क्या और फ़लस्तीन के मसाले के साथ किसे अटैच करेंगे इसमें।
बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे तकरीबन आगे की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे ना जुग्राफियाई अवामिल हैं इस खित्ते की अहमियत को उजागर करते हैं और बढ़ाते हैं, या इक्तसादी अवामिल हैं जैसे अर्ज़ हुआ कि मुख्तलिफ बर आज़मों के दरमियान जो ये टनल बन रहे हैं, इस तरह फिर ये देखते हैं कि अदियान की दिलचस्पी क्यों है इतनी इसके बारे में।
बिल्कुल
अगरचे तारीख़ के अंदर हम देखते हैं कि अम्बिया का सिलसिला इसी जगह के ऊपर, जिसको कनान कहा जाता था तारीख़ के अंदर, कि अम्बिया का सिलसिला यहाँ पर रहा इसी सरजमीन के ऊपर, के कनानी अरबों का हिजरत करके जब यहाँ पर आए तो कनान के नाम से मारूफ हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि इन्हीं अदियान के अंदर जो मारूफ हमारे पास, और अगर हम बहुत बड़े अध्ययन की भी बात करें कि मसीहियत के अंदर, यहूदियत के अंदर या इस्लाम की बात करें, तो इनके सहीफ़ों के अंदर इसी इस्तेलाह के साथ जो आपने अर्ज़ की कि आर्मागेडन का जो कॉन्सेप्ट है अरबी में, जिसको आर्मजिदून कहते हैं, इनके सहीफ़ों के अंदर ये बात बहुत सराहत के साथ लिखी हुई है कि वो जो हक व बातिल के दरमियान एक आखिरी नबर्द होनी है वो इसी खित्ते के अंदर होनी है, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन और हत्ता बाज़ रवायात के अंदर यरूशलम का नाम तक मेंशन होके आया कि यहाँ पे हक व बातिल की नबर्द होनी है, और अगर जिसका भी इस खित्ते के ऊपर कंट्रोल होगा या इस खित्ते के अंदर रसाई होगी और उसका असर रसूख अगर यहाँ पे हुआ तो वो रोल प्ले कर सकेगा इस आखिरी नबर्द के अंदर, आर्मागेडन के अंदर। इसी की तैयारी के लिए उन्होंने तकरीबन इसी इन पिछले 100 साल के अंदर काफ़ी नावल भी लिखे गए, काफ़ी फिल्में बनाई, ड्रामे बनाए इसके ऊपर, ताकि लोगों को बताया जाए इसकी अहमियत किस तरह से अदियान के नज़दीक और इंजील के अंदर मसीहियत के नज़दीक इतना वाज़ अंदाज में लिखा है कि यहाँ पर मसलन उस आखिरी मौका जब आएगा उस ज़माने के अंदर, यहाँ पे यहूदी पूरी दुनिया से जमा होंगे इस जगह के ऊपर, आबाद होंगे यहूदी, और फिर मसीह का ज़हूर होगा, हज़रत मसीह का, और फिर ये सारे यहूदी हज़रत मसीह के हाथ पे बैत करेंगे बाकायदा, इतनी तफसील के साथ आया। फिर इसको आगे बयान करते हैं कि जब ये बैत कर लेंगे तो इनके नज़दीक, मसीहियों के नज़दीक ये सारे मसीह हो जाएंगे, और जब ये मसीही हो जाएंगे तो इनकी जंग मुसलमानों से होगी। ख़ास तौर पे इन्होंने दो को मेंशन किया कि अरबों के ख़िलाफ़ और ईरानियों के ख़िलाफ़, इसमें
हाँ वो मुसलमान ही है,
मुसलमान ही है, और कहते हैं कि बाकायदा ये जो जंग होगी मुसलमानों को पहले शिकस्त देंगे और फिर वो जो आखिरी मार्का है वो वहाँ पर आता है कि ये ईरानियों के ख़िलाफ़ ये आखिरी मार्का होगा। बस इनको ये पता है कि ईरानियों की दिलचस्पी अगर यहाँ पर बढ़ेगी, वो तो अभी ईरानी की हैसियत से देख रहे हैं, वो तो इस्लाम की उससे हैसियत से नहीं देख रहे, तो हमें हतमन फिर इसमें कूदना है इसके अंदर। तो कहते हैं हत्ता 9/11 का जो सिनेरियो बकायदा बनाया गया था, जिसके अंदर बुश ने बकायदा कहा था कि ये हम सलीबी जंगों को इसके अंदर इदामा देंगे, यानी कि इसको तसलसल देंगे इधर आके, और ये वही सिलसिला हम करेंगे, उसमें बकायदा नाम लेके कहा था। तो उसका सिनेरियो भी इसीलिए बनाया गया था कि अब अच्छा फिर इसमें बात ये भी होती है कि भाई मसीहियत को इतनी क्या दिलचस्पी थी, और ज़्यादातर नाम तो यहूदियत का आता है, और मसीही और यहूदी आपस में भी इनके इतने तनाज़े हैं शदीद, इनके अंदर आपस में मसाइल हैं, लेकिन सिर्फ इस खातिर कि उनको ये बात पता है मसीहियत को कि यहूदी यहाँ पे आबाद होंगे और ये बैत कर लेंगे मसीह के हाथों में, तो इसलिए ये चाहते हैं कि अगर यहूदियत के जरिए ही सही आखिर में अगर मसीहियत के हाथ में आनी है बागडोर, तो अभी इनकी हिमायत करो यहाँ पे आके, जबकि इनको खुद भी पता है कि ये इस कदर
यानी
है।
मसीही जो हैं, जो इस किस्म की सोच रखते हैं, वो यहूदियत को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये अरबों और मुसलमानों और ईरानियों से लड़ें,
बिल्कुल,
और जब असल मौका आएगा तो हम
सही बात है, क्योंकि इसकी ये चीज़ कहाँ से पता चलती है कि इसलिए अगर इनको इतनी हमदर्दी होती तो ये इन्होंने अपनी सरजमीन यहूदियत के लिए क्यों नहीं खोली, अगर इनको इनके आवारा होने से या इनके दरबदर होने से इतनी हमदर्दी होती और जो मुस्लिम इनकी बाज़ूकात बयान भी करते हैं तो कहते हैं इन्होंने आपने अपने दरवाजे क्यों नहीं खोले इसी यहूदियत के लिए, तो यहाँ से साफ पता चलता है कि ये खुद इनके लिए यहूदियत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस यहूदियत के हाथों एक काम करवाना इंपॉर्टेंट है जो इनके लिए मसीहियत के नफे के अंदर है ये सारी चीज़ें। तो इस खातिर ये आर्मागेडन का ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और चूंकि यरूशलम के नज़दीक ये पहाड़ी का नाम है आर्मागेडन, यरूशलम से 60 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, तो इस पहाड़ी के गिर्द होनी है ये जंग इनके नज़दीक, ये सब कुछ वाजे। अच्छा हमारे पास भी
रिवायात
हैं जो इमाम زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے کہ یہ خطہ ان روایات کے اندر فراموش نہیں ہے کہ اس خطے کے اندر باقاعدہ اس خطے سے لشکر آنا نہ ان روایات کے اندر آیا ہے. اور بعض اوقات یہ جو ہے تعبیر کرتے ہیں کہ حزب اللہ کی جو تحریک ہے اینن بعض کہتے ہیں کہ یہ اسی لشکر کی تیاریاں ہیں, اس لشکر کے یہاں پہ خدا کا کرم ہے کہ وہاں پہ مثلا حقیقی اسلام کی ترجمانی بھی وہاں پہ ہو رہی ہے.
بالکل ایسا ہی ہے, یعنی ہم دونوں پہلوؤں کو لے کر چل رہے ہیں اور بیان کیا. اگر ہم مادی اعتبار سے دیکھیں تب بھی یہ علاقہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کو مسلمان ہی استفادہ کریں اور جو حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ جو سورس مادی ہیں خود مسلمانوں کے لیے ہونے چاہیے. اگر آئیڈیالوجیکل دیکھتے ہیں ہم آ کر تب بھی اس علاقے کی اہمیت اپنی جگہ باقی ہے, جیسا کہ ہماری روایات میں کہ مہدویت کا ایک نظریہ جو پایا جاتا ہے, جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جب ظہور ہوگا امام کا تو مختلف جگہوں سے جو گزر کے انہوں نے آنا ہے اور آخری نبر جو ہونی ہے اس میں دشمن کے خلاف, تو وہ یہی علاقے ہیں کہ جو, تو لہٰذا وہ بھی اپنی کتابوں کو دیکھ کر اس کی تیاری کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ تیاری کرنا ہے. اور اگر کہیں دشمن کی وجہ سے ذہن میں تشویش آتی ہے تو روایات کا مطالعہ کر لینا جو ہے وہ ضروری ہے اس میں.